जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम्, विहितवहित्र चरित्रमखेदम्। केशवधीरता मीन शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे, धरणि धरण किण चक्र गरिष्ठे। केशवधीरता कुरम शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे, धरणि धरण किण चक्र गरिष्ठे। केशवधीरता कुरम शरीरा, जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणि तव लग्ना, शशिनि कलंक कलेव निमग्ना। केशवधीरता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। पतति दशन शिखरे धरणि तव लग्ना, शशिनि कलंक कलेव शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नख मधुत श्रृंगा, दलित हिरण्य कशिपुर तनु भृंगा। केशव धीरता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नख मधुत श्रृंगा, दलिता हिरण्यकशिपु केशवधीरता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। छलयति विक्रमणे बलिमद्भुत वामन, पदनख नीरजनित जन पावन। केशव धीरता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। छलयति विक्रमणे बलिमद्भुत वामन, पतनखनीरजनित जनपा। केशवधीरता ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರುಧಿರಮಯೇ ಜಗತ ಭಗತ ಪಾಪಂ ತಪಯಸಿ ಪಯಸಿ ಶಮಿತ ಭವತಾಪಂ ಕೇಶವಧೀರ್ತಾ ಭೃಗುಪತಿ ರೂಪಾ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರುಧಿರಮಯೇ ಜಗತ ಪದ ಪಾಪಂ ತಪಯಸಿ ಪಯಸಿ ಶಮಿತ ಭವತಾಪಂ ಕೇಶವಧೀರ್ತಾ ರಿಗುಪತಿ ರೂಪಾ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಜಯ ಜಗದೀಶ ವಿತರಸಿ ದೀಕ್ಷುರಣೇ ದೀಪ್ತಿ ಕಮನೀಯಂ ದಶಮುಖ ಮೌಲಿ ಬಲಿಂ ರಮಣೀಯಂ ಕೇಶವಧೀರ್ತಾ ರಾಮ ಶರೀರ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಜಯ ಜಗದೀಶ ದೀಪ್ತಿ ಕಮನೀಯಂ ದಶಮುಖ ಮೌಲಿ ಬಲಿಂ ರಮಣೀಯಂ ಕೇಶವಧೀರ್ತಾ ರಾಮ ಶರೀರ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಶಿವ ಪುಷಿ ವಿಶತೆ ವಸನ ಜಲದಾಭಂ ಹಲಹತಿ ಮಿಲಿತ ಮಲಿತ ಯಮುನಾಭಂ ಕೇಶವಧೀರ್ತಾ ಹಲಧರ ರೂಪಾ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಜಯ ಜಗದೀಶ ವಸನ ಜಲದಾಭಂ ಅಲಹತಿ ಮೀತಿ ಮಿಲಿತ ಯಮುನಾಭಂ ಕೇಶವಧೀರ್ತಾ ಹಲಧರ ರೂಪಾ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಯಜ್ಞ ವಿಧೇರ ಶ್ರುತಿ ಜಾತಂ ಸದಯ ಹೃದಯ ದರ್ಶಿತ ಪಶುಘಾತಂ ಕೇಶವಧೀರ್ತಾ ಬುದ್ಧ ಶರೀರ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಸದಯ ಹೃದಯ ದರ್ಶಿತ ಪಶುಘಾತಂ ಕೇಶವಧೀರ್ತಾ ಬುದ್ಧ ಶರೀರ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಮ್ಲೇಚ್ಛ ನಿವಹ ನಿಧನೆ ಕಲಯತಿ ಕರವಾಲಂ ಧುಮಕೆ ತುಮೇವ ಕಿಮಪಿ ಕರಾಲಂ ಕೇಶವಧೀರ್ತಾ ಕಲ್ಕಿ ಶರೀರ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಜಯ ಜಗದೀಶ ನಿಧನೆ ಕಲಯತಿ ಕರವಾಲಂ ತುಮಕ के तुम्ही वकीम पी कराल केशव धीरता कल की शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश श्री जय देव कवेरी समुदित मुदारम शृणु सुखदम शुभदम भवसारम केशव धीरता दशविधरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय देव कवेरितमुदित मुदारम शृणु सुखदम शुभदम भवसारम केशव धीरता जय जगदीश हरे वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्दीप्रते दैत्यं धारयते बलिं क्षलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमासन्वते म्लेच्छान् मूर्च्छयते दशात् कृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः श्री जय देव गोस्वामी की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेम लोग कितने दिन से सोच रहे थे कि ये दशावतार गाऊंगा। ये दशावतार स्तोत्र जो है वो जयदेव गोस्वामी ने लिखा है। जयदेव गोस्वामी भगवान के बहुत अच्छे भक्त हुए है ना, और उन्होंने मुख्य दश अवतारों का श्लोक बनाकर इसमें रखा है ना, जिसमें सबसे पहला है मीन शरीरा। कल था ना प्रलय पयोधि जले धृतवान सिवेदम विहित वहित्र चरित्र मखेदम केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। तो प्रलय के समय पे उन्होंने क्या किए थे, मत्स्य अवतार लिया था। क्यों लिया था? मत्स्य अवतार लेने के पीछे भगवान के दो रीजन थे। सबसे पहला कारण, भगवान ने हयग्रीव नाम के असुर को मारने के लिए क्या किया था, मत्स्य अवतार लिया था। हयग्रीव असुर को चाक्षुष मन्वंतर का जब भी एंड था, इससे पहले कौन सा मन्वंतर था, अभी कौन सा चल रहा है, अभी कौन सा सातवां, क्या नाम है उसका, वैवस्व, क्या नाम है, वैवस्व नाम। वो कौन है, सूर्य देव का पुत्र है वैवस्व। तो वैवस्व मनु से पहले चाक्षुष मनु था है ना, और 72 चतुर्युग जिसको दिव्य युग कहा जाता है ना, तो 72 चतुर्युग तक वो क्या करते हैं, राज्य करते हैं अपना है ना। और राज्य में राज्य की समाप्ति जब हुई है ना, वो समय पे जब प्रलय हुआ तभी भगवान ने सत्यव्रत मुनि के ऊपर कृपा करने के लिए ये अवतार लिया था। और उस समय पे सत्यव्रत मुनि की कथा, जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे है ना, उनके यहाँ गए थे, मछली हाथ में आ गए, फिर आगे चल, फिर भगवान ने कहा कि 7 दिन के बाद पूरा ब्रह्मांड जो है वो पानी से भर जाएगा है ना, सारा प्रलय हो जाएगा, और वो समय पे इस दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। तभी तुम क्या करना, औषधियां वनस्पतियां आदि पशु आदि जीवात्माओं को संग्रहित करके और सप्तर्षियों को अपने साथ लेकर एक नाव तुम्हारे पास आएगी और उस नाव में आप चढ़ जाना, और उस नाव में चढ़ने के बाद तुम्हारे पास तुरंत एक मछली आएगी और वासुकी नाग आएगा। वासुकी नाग को उस मछली के सिंग के ऊपर बांध देना, और उस वासुकी नाग का दूसरा जो होगा वो कहाँ पे बांधना, अपनी नाव के साथ, और उस नाव को मछली जो है वो पूरे पानी में क्या करेगी, तैर के घुमाएगी, समझे। तो इस प्रकार से भगवान ने नौका विहार करवाया सत्यव्रत मुनि को। तो एक प्रलय ये है, चाक्षुष मन्वंतर के अंत में जो हुआ था वो एक प्रलय है, और एक सृष्टि प्रारंभ में अर्थात ब्रह्मा जी का जब दिन एंड होने वाला था, दिन की समाप्ति होती है ना, वो समय पे भगवान ने वेदों की रक्षा करने के लिए हयग्रीव नामक असुर को वध किए थे, है ना। वो समय पे भी भगवान ने एक अवतार लिया था मत्स्य अवतार। तो भगवान के दो मत्स्य अवतार हुए, एक सत्यव्रत मुनि के ऊपर कृपा करने के लिए और दूसरा वेदों को रक्षा करने के लिए, है ना। तो दो समय पे भगवान ने धृतवानसि वेदम, यहाँ पे वही मीन अवतार, वेदों को धृत मतलब बचाने के लिए, उसको रक्षा करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। तो ब्रह्मा जी सो रहे थे और सोते सोते क्या हुआ, उसके हाथ में जो वेद थे उसको क्या किया, वो हयग्रीव चुरा के भाग रहा था, और जैसे ही भाग रहा था भगवान ने देख लिया कि हयग्रीव जो है वेदों को चुरा के, तो भगवान ने तुरंत उस हयग्रीव को मत्स्य रूप लेके उधर ही, और मत्स्य रूप लेके मार दिया। और फिर बहुत ब्रह्मा जी जितनी रात तक सोए उतने घंटे तक भगवान नौ मतलब वो समुद्र पानी से भर जाता है, पूरा ब्रह्मांड पानी से ही भर जाता है, और उसमें भगवान मस्त स्विमिंग किए। तो ये है, भगवान ने दो उतार लिए, एक चाक्षुष मन्वंतर के अंत में जो लिए थे वो एक सत्यव्रत मुनि के ऊपर कृपा करने के लिए, और ब्रह्मा जी के एक दिन के एंड में लिए थे, है ना। तो भगवान ने दो बार मत्स्य उतार लिया। और आज का जो है वो क्षितिरिह विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धरण किरण चक्र गरिष्ठ है केशव धीरता कुर्म शरीरा जय जगदीश। भगवान ने कुर्म शरीर धारण किया, आज उसका ही वर्णन है। सुध गोस्वामी आज का जो श्लोक है वो कुर्म शरीर है, भगवान ने क्यों कुर्म शरीर धारण किया उसके ऊपर ही विवेचन दिए हुए हैं, तो हम उसको श्लोक के माध्यम से समझेंगे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 16। सुरासुराणामुदधिं मन्थतां मन्दराचलम् मत्नतां मन्दराचलम् तत्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः सुरासुराणामुदधिं मत्नतां मन्दराचलम् तत्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशं विभुः सुरासुराणामुदधिं मत्नतां मन्दराचलम् तत्रेकमठरूपेण पृष्ठ एकादशं दशे विभुः सुरासुराणामुदधिं मत्नतां मन्दराचलम् दद्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः सुरासुराणां मुदधिं मत्नतां मन्दराचलम् दद्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः। सुरासुराणां मुदधिं असुराणाम तथा नास्तिकों का उदधिम समुद्र में मथनताम मंथन करते हुए मंदराचलम मंदराचल पर्वत को दध्रे धारण किया कमठ कच्छप रूपेण के रूप में पृष्ठे पृष्ठ पर एकादशे ग्यारहवा विभु महान। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद इस प्रकार है, भगवान का ग्यारहवा अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के अस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथनी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तात्पर्य, एक बार आस्तिक तथा नास्तिक, आस्तिक कौन है? देवता। नास्तिक कौन है? एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सके। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के अवतार कच्छप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरम मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदापनीयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रोज हम यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं और इसकी व्यवस्था हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद महाराज ने किया है, क्योंकि भागवत जो है वो नित्य रूप से श्रवण करने योग्य ग्रंथ है। जैसे व्यक्ति सुबह उठ के शाम तक कार्य करता है, किंतु उसके पीछे शक्ति प्रदान करता कौन है? उसका अन्न भोजन। अगर शरीर में शक्ति ना रहे तो व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। उसी प्रकार भक्ति में अगर शक्ति व्यक्ति को प्रदान करता है तो वो कौन करता है? भागवतम जो है वो आत्मा का क्या है? भोजन है। जब तक उसमें शक्ति प्रदान नहीं की जाती तब तक वो भी कार्य, और आत्मा का एक ही कार्य है, क्या है वो? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्ण की दास उनकी सेवा करना ये जीव का स्वरूप है, और वो स्वरूप अवस्था में कार्य तभी कर सकता है जब उसको शक्ति हो, और उस शक्ति को प्रदान करने वाला कौन है? श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम कैसा ग्रंथ है? निगम कल्पतरोर गलितम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, है ना। ये जो ग्रंथ है निगम कल्पतरोर गलितम, है ना, ये निगम का अर्थ होता है सारे वेद और शास्त्र को क्या कहा जाता है? निगम, है ना। निगम कल्पत्रो गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये जो भागवत ग्रंथ है वो सारे वेद और शास्त्रों का क्या है? सार है, है ना? सारे वेद और शास्त्रों का क्या है? सार है। और इसको किसने कहा है ये बोलने वाले कौन है? शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम, शुक के मुख से ये जो है अमृत धरा है। तो सारे वेद शास्त्र जो है वो कल्प वृक्ष के समान है, निगम कल्प तरो, निगम अर्थात वेद शास्त्र कल्प वृक्ष के समान है ना। और गलितम फलम, और उस वृक्ष का फल क्या है? श्रीमद् भागवत। सारे वेद और शास्त्र वृक्ष के समान है और उसका फल क्या है? भागवत। और गलितम फलम, ये फल कैसा है? गला हुआ, मतलब पका हुआ, एक कच्चा नहीं है, पका हुआ फल है। और पके हुए फल में गलितम का अर्थ होता है जिसमें सारी चीज गल जाए, मतलब वो छिलका भी गला हुआ रहता है और गुठली भी गला हुआ रहता है, उसमें छिलका भी नहीं निकलता और गुठली भी नहीं निकलती, खाली जूस लटका हुआ है। ये भागवतम ग्रंथ है, इसमें कोई कचड़ा नहीं है, क्योंकि भागवतम के इसके मंगलाचरण में वेदव्यास जी जहां प्रारंभ करते हैं तो उसमें कहते हैं कि सारे इसमें से बेकार चीजें जो है वो धर्म प्रोजित कैतवत्र, प्रोजित कैतवत्र, कैतव धर्म जो है वो सारा इसमें से निकाल के फेंक दिया गया है, इसमें कोई कपट नहीं है। बाकी ग्रंथों में कभी कभी कहां कहां पर कपट किया जाता है, लोगों को ठगने के लिए कुछ बातें भी बताई जाती, लेकिन भागवतम ऐसा नहीं है। भागवतम शुद्ध भगवत ज्ञान, भगवत भक्ति, भगवत प्रेम प्रदान करने वाला ग्रंथ है, समझ रहे? बाकी ग्रंथों में कहीं कहीं पर घोटाला भी किया जाए, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है ना। इसमें मतलब उसमें गुटली छिलका है, इसमें नौ गुटली नौ छिलका है ना। तो निगम कल्प करो, ये कल्प वृक्ष के समान सारे वेद जो है वृक्ष के समान है, और उसका पका हुआ फल क्या है? भागवत है ना। और शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, और ऊपर से शुक के मुख को यह स्पर्श किया हुआ है। अब जानते हैं जब आम पकता है तो पकने के बाद अगर उसमें कोई पक्षी अगर अपना चोंच मार दे तो और मीठा हो जाता है, आपने अनुभव किया हो तो। वो जब जाड़ से वो जब भी आम या कोई फल और भी गिरता है तो बहुत मीठा होता है। जिस फल के अंदर पक्षी या फिर तोता मुख्य रूप से अगर चोंच मार दे तो फल बहुत मीठा होता है, क्योंकि वो चॉइस करके ही मारता है। वो चुन के ही उसमें चोंच मारेगा। तो शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। इसको मुहु रहो रसिका भुवि भावुका, इसको बार बार पियेंगे। मुहु का अर्थ क्या होता है? बार बार। मुहु रहो रसिका, रसिक जन जो होगे उसको बार बार सुनेंगे, उसको बार बार पियेंगे। और भावुका, जो भावुक होंगे वो व्यक्ति इस ग्रंथ को निश्चित रूप से बार बार श्रवण करने के लिए उत्सुक रहेंगे। देखिए यहाँ पर भावुकता शब्द तो अज्ञानवश जो भावुकता होती है वो नहीं होता है, समझ रहे हैं? ज्ञान के आधार पर जो भावुकता होती है, जैसे भागवतम श्रवण करने के क्या योग्यता है, या फिर भागवतम कहाँ से श्रवण करना चाहिए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, ये ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ और कुछ नहीं होता है। ज्ञान क्या होता है? कहाँ से हमको ज्ञान प्राप्त करना है, भागवतम कहाँ से सुनना है, योग्य गुरु परंपरा से श्रवण करना, ये ज्ञान है। अगर ये ज्ञान के माध्यम से अगर हम श्रवण करते हैं और उसमें अगर हमको भाव भी होता है तो उसमें कोई बुरी बात, क्योंकि भगवान जो है वो भावग्राही जनार्दन है, ज्ञानग्राही जनार्दन नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा ज्ञान के कारण जो हृदय होता है ना बिल्कुल कठोर पत्थर की तरह हो जाता है, और फिर ये भागवतम सुनते हो तो उसके लिए स्टोरी है, वो क्या सुन रहा है? भागवतम को क्या मान लेते हैं, उसको क्या सुनना है? सुनना क्या है? तो फिर भागवतम किसके लिए है? हमारे लिए है। ज्ञान केवल तब तक आधार रखता है जब तक हम योग्य परंपरा तक जुड़ नहीं जाते, और जब योग्य परंपरा से जुड़ गए तब उसके बाद ज्ञान की फिर किसकी प्रधानता है? भाव की प्रधानता, क्योंकि भगवान जो है वो भावग्राही जनार्दन है। व्यक्ति के भावना को ही भगवान ग्रहण करते हैं, है ना? तो भक्ति के अंदर भाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, है ना? यदि भक्ति के अंदर भावनाएं नहीं है तो वो केवल एक क्रियाएं मात्र रह जाएगी, हालांकि निरर्थक नहीं है, उसका भी फल है, किंतु जितना फल भाव से किया जाता है, इसलिए भगवान ने कई सारी जगहों पर यदि मेरी सेवा करना है, पत्रम पुष्पम फलम तो यम योमे भक्त्या, भक्त्या का अर्थ होता है, भक्ति का क्या अर्थ है, भक्त्या मीन्स प्रेम से, है ना, भाव से मुझे अगर कोई ऑफर करता है इन सारी चीजों को तो मैं ग्रहण करता हूँ, है ना। अगर उसमें कोई भाव नहीं, एक ड्यूटी की तरह करता है तो फिर है ना पूरा पूरा लाभ वो प्राप्त नहीं कर पाए, है ना। इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है वो रसिका भूवि भावुका, रसिक लोगों के लिए है और भावुक लोगों के लिए भी है। जब तक व्यक्ति को भावुक मीन्स ऐसी बातें यदि प्रामाणिक स्तोत्र से हमको प्राप्त होती है तो उसको सीधा सीधा ग्रहण करना चाहिए। जैसे भागवतम है ना, कठोर हृदय वाले इस बात को कभी ग्रहण कर ही नहीं सकते कि चित्रकेतु महाराज को 1 करोड़ पत्नी थी, है कि नहीं। भक्त लोग का भी दिमाग आउट हो जाता है, इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। वो किसकी तरह होता है मालूम है, वो एक पंडित था और एक धोबी था, नहीं वो मोची चमार, चमार ने स्वीकार किया नहीं ये हो सकता है, लेकिन वो पंडित ने क्या किया, तो हम पंडित की तरह ही हो जाएंगे। कठोर हृदयता का ये प्रमाण, बाकी भागवतम में एक भी बात गलत नहीं बताई गई है ना, 100% सत्य बातों को ही इसमें निरूपित किया गया है। किंतु फिर भी हमारा जो क्या है, हृदय दुर्बल्य, ये क्या है हमारा, उन बातों को हम क्या करते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते, है ना। इसलिए कहीं कहीं पर भावुकता का अर्थ ये भी होता है कि जो भगवत योग्य गुरु परंपरा से जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है वो एज इट इज हमको क्या करना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। तो मुहु रहो रसिका भूई भावुका, इस भागवतम को रसिक जन और भावुक जन इसको मुहु मुहु बार बार क्या करेंगे, श्रवण करेंगे। भगवान भी गीता में कहते हैं कथयंतिश्च माम नित्यम नित्यम, है ना, मेरी कथाओं को नित्य कहेंगे और तुष्यंतिश्च रमंतिश्च, हमेशा उसी में तुष्ट रहेंगे और उसी में रमण करेंगे। तो ये है ग्रंथ, जिस भागवत को हम श्रवण कर रहे हैं उसकी ये महिमा है, है ना। जब तक उस ग्रंथ की महिमा को हम श्रवण नहीं करते तब तक उसके प्रति हमको श्रद्धा प्राप्त, है ना, उसके प्रति विश्वास जो है वो हमारा दृढ़ नहीं होता। इसलिए कभी भी भागवत हमको जब श्रवण कराया जाता है या किया जाता है, सबसे पहले उसमें भागवत महात्म्य को कुछ शब्दों में बोलना बहुत ही आवश्यक होता है ना। इसलिए भागवत हमको नित्य रूप से जब कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो नित्य रूप से उसकी महिमा को एक बार गाना चाहिए, है ना। भागवत की महिमा गाना मतलब भगवान की महिमा को गाना है, क्योंकि भागवत जो है वो स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भागवत जो है वो भगवान की वांगमयी मूर्ति है ना, ये भी एक भगवान का ही स्वरूप है ना। और प्रत्यक्षा वर्तते हरे, जैसे भगवान हमारे सामने उपस्थित हो जाए और जैसे हमारे साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही ये भागवत भी हमारे साथ व्यवहार करता है ना, सही मार्गदर्शन हमको ये प्रदान करता है ना। तो इस प्रकार भागवतम के कई सारे, आगे भागवतम के जैसे दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में, प्रथम स्कंद के है ना, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय के अंत में कुछ श्लोकों में और फिर दूसरे स्कंद के अंतर्गत कई जगहों पर इस भागवतम की महिमा को गाया गया है ना। और स्कंद पुराण, पद्म पुराण, इन सारे ग्रंथों में भी भागवत की महिमा को गाया गया है। तो इन सारी महिमाओं को भी व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए, है ना। उनसे हमको इस ग्रंथ के प्रति क्या होता है, रुचि बढ़ता है, पढ़ने के लिए हमको क्या होता है और लालसा बढ़ती है, है ना। तो आइए हम जो आज का श्लोक है, सुरासुराणाम मुदतिम मत्नताम मंदराचलम दत्ते कमठ रूपेण पृष्ठे एकादशम विभु। तो भगवान ने 11वें अवतार के रूप में कच्छप रूप धारण किया, है ना। 11वां अवतार कौन सा है, कच्छप, कच्छप मीन्स कछुआ, है ना। और ये दशावतार स्तोत्र लिखने के बाद जयदेव गोस्वामी लिखते हैं, श्री जयदेव कवेरिदम मुदितम मुदारम श्रुणु सुखदम सुभदम भवसारम। ये जो है श्रुणु, सुनने में कैसा है, सुखदम, ये सुनने में सुख देता है। ये दशावतार स्तोत्र जो उन्होंने लिखा, जयदेव गोस्वामी लिखते हैं कि श्रुणु सुखदम, ये सुख देने वाला है, और सुभदम, शुभदम का क्या अर्थ होता है, शुभ का अर्थ होता है कल्याण, हमारा मंगल करने वाला। तो तो श्रुणु सुखदम सुभदम भव सारम, इस भव सागर के अंदर कुछ सार वस्तु है तो ये 10 अवतार है। संसार का सार क्या है? दशा अवतार। संसार का सार है दशा अवतार, समझ रहे हैं? तो इस संसार का सार है दशा अवतार, क्योंकि भगवान ने 10 रूपों में आके किस प्रकार भक्तों की चिंताओं को हरण किया और किस किस प्रकार धर्म की स्थापना किया, इसका निरूपण इसमें अच्छी तरह से है। तो ये दशा अवतार जो है वो सारे इस भव सागर का सार है। अगर कोई व्यक्ति इसको श्रवण करता है तो क्या होता है? इस भव सागर से भी वो मुक्त होता है, है ना? तो केशव धीरता दशविध रूपा जय जगदीश हरे। केशव ने इस दशविध रूप को धारण किया। केशव का क्या अर्थ होता है? भगवान कृष्ण का नाम है केशव, लेकिन केशव का क्या मतलब होता है? क का क्या अर्थ होता है जानते हैं? क मीन्स ब्रह्मा। क किसका नाम है? खाली क, क ख ग, तो क जो है वो ब्रह्मा को कहा जाता है, और श किसको कहा जाता है? शिव जी को। और व का अर्थ होता है वश में। ब्रह्मा और शिव जी को जो अपने वश में रखते हैं वो है केशव। और दूसरा अर्थ है केशव, जिनके केश बहुत ही सुंदर है उसको क्या, केश मीन्स क्या होता है? भगवान के बाल जो है बहुत सुंदर है, इसलिए भी उसको क्या कहा जाता है? केशव। तो इस प्रकार केशव धीरता दशविध रूपा जय जगदीश हरे। उस केशव भगवान की जय हो जिसने 10 प्रकार के इस रूप को धारण किए। तो 14 मनु, आप जानते हैं सृष्टि का काल चक्र किस प्रकार कार्य करता है? ब्रह्मा जी का एक दिन, और उसके एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु। उसके एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। कितने? एक दिन में 1000 युग, कलयुग नहीं, द्वापर नहीं, ये चारों को मिला के जो होता है ना उसको चतुर्युग कहा जाता है, या फिर दिव्य युग कहा जाता है। तो ये 1000 चतुर्युग इज इक्वल टू ब्रह्मा का एक दिन। तो उसमें 14 मनु इस 1000 चतुर्युग के ऊपर 14 मनु राज करते हैं अपना। 14 मनु क्या करते हैं? अपना शासन चलाते हैं। तो अभी जो मनु चल रहा है वो 7वां मनु चल रहा है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे के अंतर्गत 7वां मनु अभी राज कर रहा है, और 7वें मनु के अंतर्गत उसको एक मनु के हिस्से में कितना चतुर्युग आएगा मालूम है? 72 चतुर्युग। 72 चतुर्युग एक मनु के हिस्से में आएगा। तो पहला मनु जो है वो 72 चतुर्युग राज करके निकल गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, ये 7वां चल रहा है। ये कौन सा? वैवस्वत मन्वंतर। ये जो है वो वैवस्वत मन्वंतर चल रहा है, और उसके 72 चतुर्युग जो होता है उसमें 28वां चतुर्युग चल रहा है अभी, समझ रहे? उस मनु के 72 चतुर्युग के अंतर्गत ये 28वां मन्वंतर चल रहा है, और 28 के अंतर्गत ये कौन सा? कलयुग। कलयुग का प्रथम चरण, कलयुग का कौन सा है ये? मतलब प्रथम चरण मीन्स शुरुआत, है ना? कलयुग की ये प्रारंभ है ना। 5000 साल मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि कलयुग के आयुष्य 432000 है। कलयुग कितना जिएगा, चलेगा? 4 लाख। तो 5000 उसके सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। तो कलयुग का तो ये क्या है? प्रारंभ है ना। और भी बुरी दशा होने वाली है आगे जाके। प्रायण अल्पायुष सभ्य क्लास में नियुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। फिर भी अभी तो कुछ कुछ स्थिति हमारी ठीक ठीक लग रही है, लेकिन आगे जाके लोगों की हालत और खराब होने वाली। भागवतम के 12वें स्कंद में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है कि क्या हालत होगी आगे। ये दवाइयां जो है वो आज तो मेडिकल स्टोर में मिलती है ना, जैसे सब्जी वाले लेके निकलते हैं ना, ऐसे फिर आगे जाके वो लारी लेके निकलेंगे दवाइयां, क्योंकि घर घर में रोगी पड़े होंगे, है ना? तो बहुत बुरी हालत है। तो इस प्रकार ये जो है कलयुग चल रहा है। ये कौन सा चल रहा है? 28वां चतुर्युग का कलयुग चल रहा है। तो ब्रह्मा जी का 12वें दिन के 7वें मन्वंतर के 28वां चतुर्युग का कलयुग का प्रथम चरण, समझ? तो ये समय है ना, ये समय अभी कार्य कर रहा है। तो अच्छा, तो भगवान ने कौन से मन्वंतर में अवतार लिया था? मत्स्य अवतार कब लिया था, या फिर कच्छप अवतार कब लिया? ये कच्छप अवतार भगवान ने कब लिया? ये कच्छप अवतार जो है, इसको भगवान ने नहीं, मत्स्य अवतार चाक्षुष मन्वंतर में लिया है ना। मत्स्य अवतार जो है भगवान ने कब लिया? चाक्षुष। और ये जो वैवस्वन मन्वंतर के अंतर ये संबंध समुद्र मंथन की कथा आती है ना। सृष्टि जब ये मनु का प्रारंभ हुआ, तभी भगवान ने कौन सा ये कच्छप रूप धारण किया। आप जानते हो समुद्र मंथन की कथा है ना। देवता और असुर का झगड़ा हो गया था, असुर लोग जीत गए थे, स्वर्ग के राजा बन गए थे, देवता लोग गए भगवान के पास स्तुति प्रार्थना किए, भगवान प्रसन्न हुए। उसने बोला कि आप लोग उनसे संधि कर लो, उसको बोलो कि चलो हम लोग समुद्र मंथन करेंगे और मिल के समुद्र मंथन करना, मैं आपको हेल्प करूंगा। तभी भगवान ने उसको जब कमेंट वचन दिया, उसके बाद देवता लोग गए असुरों की शरण में, उनसे क्षमा याचना किए, बोले कि हम झगड़ा करने नहीं आए, हम संधि करने आए, हम लोग मिलके चलो क्या करेंगे, समुद्र मंथन करेंगे। भगवान ने उसमें एग्जाम्पल क्या दिया मालूम है? जैसे सांप जो होता है वो बिल बनाता है, क्या करता है? नहीं, चूहा जो होता है वो क्या करता है बाद में, उसमें सांप क्या करता है, अंदर जाके मस्त हो चूहे को भी खाता और उसी में ऐसा ही करो, समुद्र मंथन मिलके करो और उसमें से जो मिलेगा वो हम आपको दे देंगे। देवताओं को बोला कि उसका जो अमृत निकलेगा वो आपको दूंगा, उन लोग को ऐसे ही भगा दूंगा, टेंशन मत लो, चलो मिलके समुद्र मंथन करो। तभी देवता और असुर ने मिलके समुद्र मंथन करना था उनको, भगवान ने उनको आदेश दिया था मंदराचल पर्वत लाना, उसको मथनी बनाना। क्या करना है? मंदराचल पर्वत को लाके मथनी बनाना, और मथनी को मथने के लिए रस्सी की आवश्यकता होती है, तो वासुकी नाग को रस्सी के रूप में लाना। तो देवता और असुर मिलके गए, मंदराचल पर्वत को क्षीर समुद्र में डालना था इसलिए, तो सारे देवता और असुर मिलके उस पर्वत को उठा के जब ले जा रहे थे, तो आगे जाके उनके हाथ से छूट गया, नहीं उठा पाए, शक्ति समर्थ नहीं थे। तो भगवान ने वहां पर अपना स्वरूप प्रकट किया, भगवान ने उस पर्वत को लिख के गरुड़ के पीठ के ऊपर रखा और भगवान चल दिए, बोले कि सब लोग आ जाना, कहां पे? स्टेडियम में, वहां पे खेलेंगे। तो भगवान ने फिर वहां पर उन लोगों को आमंत्रित किया, वहां पर भगवान तो समुद्र वो मंदराचल पर्वत को लेके वहां पे छोड़ दिया उस किनारे पे, और फिर देवता और असुर सभी मिल के आए, और मिल के आने के बाद वहां पर वासुकी नाग को भी इनविटेशन दे ही दिए थे देवता और असुर, सबसे पहले वासुकी नाग को बोल दिए थे कि तुमको भी आना है। और जैसे ही भगवान वहां पर उतरे, तो उतरते ही जैसे मंदर पर्वत को वहां पे रखे, पर्वत को रखने के बाद गरुड़ उधर ही खड़ा था, भगवान ने गरुड़ को इशारा किया चलो निकलो अभी। क्यों भगा दिया मालूम है क्या? क्योंकि अगर वो वासुकी आएगा नहीं तो है ना, वासुकी नहीं आएगा, वो खड़ा रहेगा तब तक वासुकी डरेगा, बोलेगा ये मार डाले, है ना, क्योंकि सांप को गरुड़ से क्या होता है, भाई होता है। इसलिए वासुकी नाग को बुलाना था, इसलिए क्या किया, गरुड़ को बोला कि जाओ तुम्हारा भी काम नहीं है, मैं बुलाऊंगा तब आ जाओ। वासुकी नाग को बुलाया गया, उसको मंदिर उसके लपेटा गया, और बाद में देवता लोग गए समुद्र में, उस पर्वत को खींच के जैसे ही मथना प्रारंभ किए, और जैसे ही मथना प्रारंभ करना ही था कि तुरंत वो जो पर्वत था वो कैसे अंदर धस गया। धसने के बाद थोड़ी क्या मंथन होगा, तब देखा कि अभी कुछ हो नहीं सकता है, सब लोग निराश हो गए, और निराश होकर समुद्र के तट पे आके मुंह लटका के बैठ गए, बोले थे इतना मेहनत किया, हालांकि मेहनत उसने कुछ किया ही नहीं है, मेहनत क्या किया, पर्वत उठा के भगवान लाए। तो भी एकदम हताश होके बैठ गए, बोले कि इतना मेहनत किया आप सब पानी में, जैसे कोई व्यक्ति धंधा चालू करता है पूरा डूब जाए, तो ये लोग की भी हालत ऐसी हो गई, एकदम निराश होके तट के ऊपर बैठ के हैं, अब तो सोचने लगे अब क्या कर सकते हैं, है ना, कुछ हो नहीं सकता। तभी भगवान ने किया, वहीं पर भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, कछुए का रूप धारण किया, वो समुद्र में गए, और समुद्र में जाके नीचे से उस पर्वत को क्या किया, उठाया और अपने पीठ के ऊपर रख दिया। अब जानते हैं कच्छप का पीठ जो होता है कैसा होता है, लेकिन भगवान ने फिर भी उसमें बैलेंस बनाए रखते हैं, नीचे बैठे बैठे भी क्या पर्वत ऐसे ऐसे गिर न जाए, है ना, तो उसका भी ध्यान रखना है। इसलिए भगवान ने एक दूसरा अवतार उसके ऊपर लिया, अजित, उसका क्या नाम है, एक तो नीचे कच्छप अवतार है, बाहर भगवान खड़े हैं, ऊपर भी तीसरा अवतार लिया, ये समुद्र मंथन ने भगवान ने कितने अवतार लिए उसका कोई गिनती नहीं है। सुखदेव गोस्वामी भी आश्चर्यचकित बोलते हैं कि भगवान का ऐसा लीला मैंने आज तक कभी नहीं सुना है ना। और फिर भी हम जब बोलते हैं तभी ये समुद्र मंथन किसने किया, किसने किया था? देवता और असुर ने। देवता और असुर क्या कर रहे हैं इसमें? कुछ तो नहीं कर रहे। भगवान नीचे गए, ऊपर गए, बाहर भी वो है, सब जगह पे भगवान ही मंथन कर रहे हैं। लेकिन अब जब टाइटल बोर्ड लगता है तो क्या बोला जाएगा? प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्वस्व अहंकार विमुढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। देवताओं को भी जो पूछा जाता है मंथन किसने, हमने ही किया था ना तो प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर वो लोग कार्य करते हैं। देवता और मनुष्य कोई भी हो, है ना, संसार के सारे जीव प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही कार्य करते हैं, और फिर भी क्या मानते हैं? कर्ता अहम, मैंने ही किया है ना, है कि नहीं? तो कर्ता अहम इति मन्यते। तो देवताओं को भी ये क्या होता है, थोड़ा अभिमान होता है कि ये किसने किया, हमने किया। रूपन महाराज इसके ऊपर बहुत सुंदर दर्शन देते हैं। बैलगाड़ी चलता है, कुत्ता नीचे चलता है ना? और कुत्ता क्या सोचता है? बैलगाड़ी तो मैं ही खींच रहा हूं है ना। ये प्रभुपाद महाराज का ये श्लोक जब भी हमको सुनते हैं, याद करते हैं, तो तुरंत ये दृष्टांत भी याद आ ही जाना चाहिए है ना। तो कर्ता हम इति मन्यते, तो सारे देवता इसी प्रकार मानते हैं कि क्या हमने इतना मेहनत किया और ये सब क्या हो गया, बेकार हो गया मेहनत। फिर भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और उसके नीचे गए और नीचे से मंदराचल को ऊपर लाए, और फिर जाके जैसे ही मथना चालू किया तो उसमें से सबसे पहले क्या निकल गया, क्या निकला? जहर निकला, और जहर को संभालने की शक्ति उनमें नहीं, और जहर को नहीं संभालने के कारण आगे जाके बहुत ही ओ ऐसा ही हालत हुआ था। ये जो हो रहा है ना ऐसा ही, वो लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे, वहां से भागे सब लोग है ना, भागे और गए भगवान विष्णु के पास। अब क्या करूं क्या करूं, बोले कि ये सब मैं नहीं संभालता, क्या सब जित भी प्रॉब्लम आए तो मेरे पास ही आओगे, जाओ महादेव के पास, वो कुछ सॉल्यूशन देंगे। तब जाके शिव जी के पास प्रार्थना की, और शिव जी तो जानते हैं नीलकंठ आगे जाके उनका काम। ये समुद्र मंथन की बहुत सुंदर कथा है, किंतु भगवान ने उसके अंदर कच्छप रूप को धारण किया। लेकिन यहाँ पे सूत गोस्वामी भी जब इसका वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि सुरा सुराणा मुदधिम मथनता मंदरा चला। किसने किया समुद्र मंथन, तो ये भी क्या बोल रहे हैं? सुरा असुरा, सुर और असुर ने मिलके समुद्र मंथन किया। देखिए सूत गोस्वामी का भी यही कहना है कि देवता और असुर ने मिलके क्या किया, मंथन किया था। तो सुर और असुर, सुर किसको कहा जाएगा और असुर को किसको कहा जाएगा? सुर किसको कहा जाएगा? भगवान विष्णु का जो भक्त है वो सुर है, वो देवता है। और असुरस्तद विपर्यय, असुर कौन है? उससे विपरीत जो कार्य करे उसको, भगवान विष्णु की आज्ञा से जो उल्टा चलता है वो असुर है, चाहे वो दो पैर वाला हो। हम मनुष्य, मनुष्य भी है, भले ही वो भगवान विष्णु की आज्ञा को अगर अवगणना करता है तो वो असुर ही माना जाए। और इसी मनुष्य में हो सकता है सुर और असुर दोनों एक ही घर में रहते हो, है ना? सुर और असुर जैसे रावण और एक ही घर में रहते थे, है ना, लंका में ही रहते थे, और एक ही घर में रहते हुए भी क्या था, सुर और असुर दोनों साथ में, है ना। ऐसे आज तो कलयुग है, कलयुग में भी ऐसा ही होता है, होता है कि घर में बेटा भक्त होता है तो माता पिता नहीं होते, या भी माता पिता होते तो एक ही घर में समुद्र मंथन चलते रहता है और उसमें अमृत निकालने जाते हैं तो अमृत की जगह में निकलता है क्या है बीज, क्योंकि क्या निकलेगा उधर, मंथन करने से और कुछ निकलने वाला तो है नहीं, है ना। तो एक ही घर में जैसे देवता और असुर, है ना, सुरा सुराणा मुदधिम, सुर और असुर ने मिलके क्या किया, मथनता मंदराचरम, समुद्र मंथन करने के लिए उद्धृत हुए थे, तैयार हुए थे तो भक्त किस, देवता किसको कहा जाएगा और असुर किसको कहा जाएगा? देवता की विचारधारा क्या होती है और असुर की विचारधारा क्या होती है, इसके विषय में देवताओं की विचारधारा या फिर भक्त की विचारधाराओं के विषय में ब्रह्मा जी ने 14वें दसवें स्कंद के 14वें अध्याय में भगवान को जब स्तुति करते तब उन्होंने कहा है कि तत्तेनुकंपासु समीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम ऋद्वाग कुंभीर विदधन नमस्ते जीवेत यमुक्ति पदे सदाय भाग। उन्होंने कहा है कि तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो, जब उसके जीवन में दुख भी आता है या सुख भी आता है तो वो क्या सोचता है, तत् अनुकंपा, ये उसकी अनुकंपा है मेरे ऊपर, क्या सोचेगा, सुख आएगा तो बोलेगा कि भगवान की कितनी कृपा है, मैं इस योग्य नहीं हूं फिर भी हमको इतना दिया, और अगर दुख आएगा तो क्या सोचेगा, ये भी भगवान की कृपा है, पता नहीं मेरे गए जन्म के कितने पाप इकट्ठा हुए हैं, सारे यही जन्म में निकाल के ये कर्म का जो गोलमाल है वो सब खत्म करके हमको जल्दी ले जाना, इसलिए दे दे, ये भक्त की विचारधारा है, समझ रहे। और इससे विपरीत क्या होता है, असुर लोग अच्छा किया तो क्या बोलेगा, इदम मस्त मया लब्धम, ये क्या मैंने प्राप्त किया, मैंने किया ना ये। भगवान ने भगवत गीता में 16वें अध्याय में सुर और असुर दोनों की प्रकृतियों का वर्णन किया है ना, पहले तो देव प्रकृति वाले लोगों का वर्णन कर दिया, उसके बाद असुर प्रकृति का विस्तार से वर्णन किया, उसमें उन्होंने कहा कि इदम मध्य मया लब्धम एवं प्राप्त से मनोरथम इदम अस्ति तदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम, कहते कि इदम मध्य मया लब्धम, ये जो है वो मैंने प्राप्त किया, इतना धन संपत्ति किसने प्राप्त किया, और इमम प्राप्त से मनोरथम, और इसको और बढ़ाने के लिए क्या करता है, वो मनोरथ करता है, मन में क्या करता है, मनोरथ है ना, हवेली वाला करता है ना मनोरथ, हमारा गुजराती खबर छ वल्लभाचार्य वाले मनोरथ करते हैं। इवन अक्रूर महाराज जो थे ना, अक्रूर जी, वो भी मनोरथ किए थे, अपने मन में क्या किए थे, मन के अंदर रथ बनाए थे, उसको मनोरथ कहा जाता है। मनोरथ का क्या अर्थ होता है, भगवान की किस प्रकार से मैं सेवा अच्छे से करूंगा, ये मन में जो भावनाएं बनती है उसको क्या कहा जाता है। लेकिन इस प्रकार इससे विपरीत असुर लोग भी मनोरथ करते हैं, क्या करते हैं, हाँ हिरण्यकश्यपु ने भी मनोरथ किया था, जिधर मिलेगा उधर ही टपका दूंगा। लेकिन उल्टा हो गया है ना, तो मनोरथ तो असुर प्रकृति लोग, इदम मध्य मया लब्धम, ये जो प्राप्त किया मैंने अपनी शक्ति से प्राप्त किया, और इमम प्राप्त से मनोरथम, और भी क्या मनोरथ, इदम अस्ति तदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम, इसको मैं कहीं इन्वेस्ट करके और भी इसका क्या करूंगा, मैं डबल करूंगा। असो मया हत शत्रु, मैंने अपने सारे शत्रुओं को क्या कर दिया है, खत्म किया है ना, मेरे सारे शत्रुओं को मैंने हरा दिया, और हनिश्चे चा परानपि, और जितने भी शत्रु होंगे उसको मैं क्या कर दूंगा, मार डालूंगा। ईश्वरोहम अहम भोगी, मैं इस संसार का क्या हूं, कंट्रोलर हूं, ईश्वरो अहम, मैं कौन हूं, ईश्वर हूं, क्या सोचता है ईश्वर मतलब क्या मालूम है, ईश्वरोहम मतलब इस घर को चलाने वाला कौन है, मैं ही चला रहा हूं ना यार, मैं नहीं रहूंगा तो कैसे चलेगा, है ना, ईश्वरो अहम, अहम भोगी, और भोगी कौन है, मैं ही भोगी हूं, ये असुर प्रकृति के लोगों का वर्णन है ना, ये सारी चीज किसके लिए है, हमारे, है ना, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, और सबसे सिद्ध व्यक्ति इस दुनिया का कौन है, मैं, क्यों सिद्ध हूं पता है, क्योंकि लोगों को ठग के कैसे पैसा जमा करना ये आपको आ गया, इसलिए आप सिद्ध हो गए। आज के पैसे वाले का मतलब क्या होता है, जितने धनी लोग हैं मतलब क्या है, वो सबसे बड़ा ठग है ना, सबसे बड़ा ठग है वो, सबसे अच्छी तरह से कैसे लोगों को ठगा जाए उसको आता है, इसलिए वो धनी है ना। तो सिद्धो हम, यही सिद्धि है कलयुग की, यही सिद्धि है, कैसे लोगों को ठगना सीख जाओ तो आप बेस्ट है ना, सबसे बेस्ट कौन है इस दुनिया का व्यापारी, जो दूसरे को अच्छी तरह से उसको पता भी ना चले और ठग ले ना, वो सबसे अच्छा व्यापारी है ना। तो सिद्धो हम बलवान, इस दुनिया का बलवान व्यक्ति मैं हूं, और मैं ही इस दुनिया का सुखी हूं, अपने आप को सुखी मानता है ना, हालांकि दुख में है ना, अपना हित किसमें है, अपना भला किसका किसमें है, वो अपने आप को सोच भी नहीं सक रहा, और फिर भी वो क्या मानता है, अपने आप को सुखी मानता है ना, ये असुर प्रवृत्ति का या फिर नीच या फिर हीन विचारधारा है ना, क्योंकि जब इंद्र को भी श्राप मिला था और वो सूकर बन गया था, तभी उसको भी बोला गया गटर में कहां पड़ा है, चल क्या तुम्हारे उधर ऐसा मिलेगा क्या? इंद्र क्या बोला, ये प्लेट तुम्हारे उधर मिलता है क्या? उधर नहीं मिलता तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप जाओ, है ना। तो अपने आप को क्या उसी में सुखी मान लेता है कि नहीं? अपने आप को उस दुखमय अवस्था में ही क्या मान लेता है, अपने आप को सुखी मान लेता है, है ना। ऐसे लोगों का उद्धार ये असुर प्रवृत्ति के लोगों की विचारधारा है ना। बलवान आड्यो भी जनवान अस्मि कौन्योस्ति सदृशो मया, मतलब इस दुनिया का धनी व्यक्ति एकमात्र है, मेरे पास पैसा है ना। अभी जनवान अस्मि, मेरे साथ जो है वो सब कुलीन व्यक्ति है, मतलब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग और है ना कुलीन ऊंचे कुल वाले लोग हैं। और कौन्यो को अन्य अस्ति सदृशो मया, इस दुनिया में मेरे जैसा और कौन हो सकता है बताओ? ये क्या है? यही असुर है, क्योंकि समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जी निकलेगी तभी सभी देवता लोग, देवता क्या, देवता और असुर सभी लोग मिलके क्या करेंगे, यही करेंगे। वो लोग सोचेंगे कि बस ये लक्ष्मी अभी जो है वो हार मेरे ही गले में डालने वाली है। लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और स्वयंवर हुआ था वहीं पे, समुद्र मंथन सब स्टॉप हो गया और जैसे ही लक्ष्मी प्रकट हुई ना तो सब लोग क्या करने लगे, बस ये हार जो आ रहा है वो मैं असुर लोग तो यही, देवता लोग को इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन असुर लोग तो बस सब लोग जितने बैठे थे सब लोग यही मान रहे थे कि मेरे से अच्छा इस दुनिया में कौन हो सकता है, वो निश्चित है कि वो जो वरमाला है मेरे ही गले में आने वाली है। सब लोग इस प्रकार की, तो ये असुरों की भावना है ना, ये असुरत्व की भावना है। तो को अन्य अस्थि सदृशो मया, इस दुनिया में मेरे समान शक्तिशाली कोई यक्षे दास्यामी मोदिश्य इत ज्ञान विमोहिता, अनेक चित्त विभ्रांता, और उसका मन जो है वो चित्त है वो अनेक जगहों पर क्या होता है, यहाँ 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 यहाँ, है कि नहीं। असुर प्रवृत्ति का लोग क्या करेगा, उसका मन एक जगह पे नहीं लगता, उसका सारी जगह पे। दुर्योधन था क्या, वो था क्या, दुर्योधन असुर था, भले ही उसको असुर संज्ञा नहीं दी जाती है किंतु फिर भी दुर्योधन क्या था, असुर प्रकृति का था, क्योंकि उसका मन हर जगह लगा रहता था, है ना, हर जगह कहीं से भी वो अपने आप को सुरक्षा, मतलब सुरक्षा क्या, वो हर जगह पे चीटिंग करना चाहता था, है ना। तो अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु चो, जिसका मन बहुत जगहों पर बहुशाखा अनंतास्त बुद्धयो व्यवसायिनां, जिसकी बुद्धि जो है वो बहुत बहुत जगहों पर लगी रहती है, वो व्यक्ति पतंती नर के सुचो, वह व्यक्ति निश्चित रूप से कहां जाके गिरेगा, नरक में। इसलिए हमारी बुद्धि को स्थिर करके एक इह कुरु नंदना, भगवान कृष्ण में हमारी बुद्धि को क्या करना होता है, स्थिर। जबी जबी देवताओं को संकट का सामना करना होता है तभी देवता लोग क्या करेंगे, जाके भगवान के पास। इसमें भी कई सारी समस्या आएगी लेकिन जाके तुरंत भगवान के पास जाएंगे। और समुद्र मंथन चालू भी हो जाएगा ना, वो वासुकी नाग भी आ जाएगा मंथन में, वो मंद्राचल को भी डाल देंगे, तो भगवान जहां जाएंगे ना उसके पीछे देवता लोग जाएंगे, भगवान के पीछे पीछे। जैसे जैसे ही मंथनी डाली और जैसे ही वासुकी नाग आके उसमें लपट गया तो तुरंत ही भगवान ने क्या किया, भगवान ने जाके उस वासुकी का मुख पकड़ लिया। तो देवता लोग ने कुछ पूछा नहीं, कुछ सोचा नहीं, उसने भी जहां भगवान गए उसके पीछे जाके उसने भी एक एक मुंह पकड़ लिया, क्योंकि वासुकी को तो बहुत सारे फण है, तो सबने जाके उसका मुंह पकड़ लिया सभी देवता ने। तो असुर लोग क्या होते हैं, असुर लोग स्वाभाविक रूप से कैसे होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, है ना। तो उसने क्या बोला, ये हम लोग नहीं पकड़ने वाले, ये हम लोग तो पूछ पूछ थोड़ी पकड़ेंगे, ये मतलब सांप का पूछ मतलब क्या, बेकार का भाग होता है ना, उसको हम लोग नहीं पकड़ेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप नहीं पकड़ेंगे तो हम लोग पकड़ लेंगे। तो भगवान वो साइड गए तो सारे देवता भी, कोई देवता ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि हम लोग पीछे क्यों पड़ेंगे, हम लोग नहीं आगे ही पकड़ेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। भगवान जाके उसके पीछे पीछे चुपचाप गए और उसने पूछ, भगवान ने पूछ पकड़ा, सब लोग जाके पूछ पकड़ लिए और देवता को बोला ठीक है आप वो पकड़ो, अरे असुर असुर को बोला आप वो पकड़ लो। तो भगवान की आज्ञा में जब भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है उस व्यक्ति को देवता कहा जाएगा। शास्त्र की आज्ञा को एज इट इज रूप से जो स्वीकार कर लेता है वो क्या है, और उसमें जो वो असुर प्रवृत्ति है ना। तो तो ये है भगवान की आज्ञा जो है वेद शास्त्र है, और वेद शास्त्र को एसिटिस रूप से ग्रहण करना ये क्या है, असुदेव प्रकृति के लोगों का ये कार्य है। और उसमें थोड़ा गोलमाल करना है ना, उसको स्वीकार न करना, आधी बात को स्वीकार, क्योंकि शास्त्र को जब आधे रूप से समझा जाता है ना तो बहुत खतरनाक होता है। और शास्त्र को छोड़िए, किसी भी बात को अगर अधूरी समझने के बाद अगर हम क्रिया करते हैं ना तो बहुत गड़बड़ होता है। एक बार हमारे गुरु महाराज कथा में मैं सुन रहा था, गुरु महाराज ने कुछ आज्ञा दिया एक शिष्य को, बोला कि तुम ये चीज लेके आओ। वो चीज क्या था वो भूल गया, वो पैसा लेके निकल गया। अब पूरा लोही बाजार घूम के आया, रात तक आया नहीं। महाराज जी सोचा कि वो पैसा लेके गया, आया क्यों नहीं। दूसरे दिन जब उसको पूछा, भाई पूछवाया, वो तो गया नहीं, महाराज जी ने पूछवा, वो गया था, पैसा क्या हुआ, तो बोलता है मैं भूल गया। तो पैसा लेके क्यों चला गया, जब पता ही नहीं था क्या लेके जाना है तो फिर पैसा लेके। तो किसी भी बात को जब अधूरी समझी जाती है ना तो उसमें बहुत दिक्कत होता है, है ना। और इसको क्या कहा जाता है, अर्ध कुकुट न्याय कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अर्ध कुकुट। कुकुट मतलब होता है मुर्गा, मुर्गा को कुकुट कहा जाता है। तो अर्ध कुकुट न्याय, अर्ध कुकुट न्याय का क्या मतलब होता है मालूम है, मुर्गी होती है, है ना, और मुर्गी दो भाई के बीच की होती है, मतलब दो भाई मिलके उसको पालते पोसते, लेकिन आगे जाके बंटवारा तो होता ही है। तो मुर्गी को क्या करेंगे, आधा मुर्गी तेरा और आधा मेरा, तो क्या करेंगे उसको, आधा तेरा, आगे का भाग मेरा और पीछे का भाग तेरा। तो पीछे के भाग के लिए झगड़ा, क्योंकि वहीं से अंडा देती है ना, वो अंडे का ही काम होता है, मुर्गी खाए वो तो क्या काम का, आगे का मुंह लेके क्या करेगा, तो पीछे का। अब दोनों मिलके क्या करते हैं, उस मुर्गी को काटते हैं। तो यही होता है, शास्त्र के सिद्धांतों को पूरा पूरा जानते नहीं और बीच में से क्या करते हैं। और दस नाम अपराध में ये भी एक अपराध है ना, क्या है वो, शास्त्र की आज्ञा की अवज्ञा करना और उनके प्रमाणों का खंडन करना, उसमें जो बातें बताई गई उसको उल्टा सीधा करके बातों को घुमा देना, है ना, ये नाम अपराध के अंदर। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यारसि। भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा कि हे अर्जुन, तुम शास्त्र में बताई गई अनुसार ही कार्य करो, उससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, है ना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से, शास्त्र को प्रमाण रख के कार्याकार्य व्यवस्थितो, अपने कार्य को करो और उससे विपरीत करो मत। अगर उससे विपरीत करोगे तो पतंती नरके सूचो, निश्चित रूप से व्यक्ति नरक में जाएगा। और भगवान की वेद की आज्ञा को अगर अवहेलना करके कोई व्यक्ति कार्य करने जाता है तो निश्चित है कि वो बच नहीं पाएगा, है ना। इसलिए सूर उसको कहा जाएगा जो भगवान की आज्ञा को बिना सोचे स्वीकार कर लेता है। और असुर को किसको कहा जाएगा, असुर, असुर जो उसको स्वीकार करेगा ही नहीं और उससे विपरीत कार्य करेगा, ये असुर है। सीधा सीधा स्वीकार करना ये क्या है, सुर, और उससे विपरीत चलना उसको असुर कहा। तो ये दोनों ने मिलके क्या किया, समुद्र मंथन किया। और लास्ट में अमृत भगवान ने किसको पिलाया, फिर देवताओं को, क्योंकि उन्होंने उसकी आज्ञा को पालन किया और उसका फल जो है वो किसको दिया, फिर भगवान ने देवताओं को दिया। इसलिए भगवान वैसे भी भक्त वत्सल है, भगवान कभी भी ये, इसमें तो बहुत बड़ा एक प्रश्न उठ गया, बोले कि सब कुछ समान समान रूप से सबने मेहनत किया, क्योंकि मंदराचल उठाने में और देवता भी गए थे, असुर भी गए थे कि नहीं, और मचने के लिए भी देवताओं ने भी मेहनत किया था और असुरों ने भी मेहनत किया था। तो दोनों ने मिलकर मेहनत किया, दोनों ने समान रूप से प्रयत्न किया, लेकिन अंत में जब फल निकला तो भगवान ने क्या किया, भगवान भगवत गीता में कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेशु न मे द्वेषस्ति न प्रिया, तो वहां पे तो बड़ा बड़ा प्रवचन दिया, मेरे लिए कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, मैं सबको समान दृष्टि। तो असुर और देवताओं को क्यों आपने ऐसा, मेहनत तो दोनों ने, बेचारा ने, दोनों ने समान रूप से मेहनत की है ना, लेकिन फिर भी भगवान जो है वो क्या है, भक्त वत्सल है ना। भगवान की आज्ञा का स्वाभाविक है, पिता के दो पुत्र हो उसमें एक पिता की आज्ञा को बहुत अच्छी तरह से पालन करता और एक बदमाश पिताजी जो बोलेगा उसका उल्टा ही करेगा, तो क्या करेगा पिताजी जब भी बंटवारा होता है ना तभी भले ही दोनों समान है, किंतु फिर भी एक को तो जो मानता है उसको तो ज्यादा ही देगा, ज्यादा नहीं देगा क्या करेगा मानो उसको तीन तीन हिस्सा करेगा, एक अपना हिस्सा रखेगा एक उसका और एक इसका, तीन हिस्सा करके क्या करेगा पिताजी दिमाग लगाएगा, अपना हिस्सा उसको देगा, बोले चल मैं तेरे साथ में हूँ, समझ गया। तो भगवान भी यही करते, भगवान अलग देखिए पिता फिर भी पिता पुत्र के प्रति भेद बुद्धि नहीं करता, पिता के लिए तो दोनों पुत्र समान है इसलिए तो उसको भी दिया, लेकिन फिर भी जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसके प्रति तो भगवान भक्त वत्सल हो जाता है। इसलिए जो भगवान की आज्ञा को स्वीकार करता है उसमें भी ये श्लोक जो है कौन सा है ये तत्तेनु कंपासु समीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि जीवेत यह मुक्ति पदे सदाय भाग, वो व्यक्ति जो है मुक्ति का दाय भाग मीन्स क्या हो जाता है अधिकारी बन जाता है ना, जैसे पिता की प्रॉपर्टी के ऊपर बेटे का अधिकार है, उसमें कोई कागज वागज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, पिताजी के बाद उस प्रॉपर्टी का अधिकारी कौन बन जाता है पुत्र है, उसका बेटा ही उसका अधिकारी है कि नहीं। उसी प्रकार भगवान को जिसने पिता मान लिया है, भगवान को जिसने पिता के रूप में स्वीकार कर लिया है वो व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी, मुक्ति अर्थात भगवान के धाम का अधिकारी वो, क्योंकि भगवान का धाम वैकुंठ है ना, और उसके वहां के कौन है वो पिता है ना, वैकुंठ पिता कौन है भगवान, और वैकुंठ के पिता होने के नाते उसका बेटा जो है वो क्या हो जाएगा उसका अधिकारी बन जाएगा कि नहीं, पिता की प्रॉपर्टी के ऊपर किसका अधिकार बन जाएगा उसका बेटे का। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान को अपने पिता के रूप में स्वीकार करेगा वो व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, वैकुंठ का अधिकारी बनता है। इसलिए ये जो है उसको वारसे में मिलती है, आप हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, गुजराती शब्द ही वारस, वारस में वारसदार होता है ना, वारस अधिकारी है ना हा? तो उसी प्रकार ये भगवान के धाम का अधिकारी भक्त बन जाता है जब उसकी शरण ग्रहण करता है ना? तो असुर लोग होते हैं उसे विपरीत चलेंगे और देवता लोग हैं वो क्या करेंगे भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहे। तो सुरा सुराणा मुदधिम मतनताम मंदराचलम, सुर और असुर लोग ने मिलके क्या किया समुद्र मंथराचलम है ना, और दद्रे कमठ रूपेण, भगवान ने उसके अंदर क्या किया कमठ का रूप धारण किया, और पृष्ठ एकादशे विभु, अपने भगवान ने पृष्ठ के ऊपर उस मंदराचल को धारण किया, और एकादश विभु, एकादश विभु मतलब भगवान ने ग्यारहवा अवतार ग्रहण किया है ना, और भगवान को यहाँ पे संबोधन दिया है विभु, क्या दिया है विभु, विभु का क्या अर्थ होता है एक अणु और विभु है ना, पढ़ने में आता था अणु और विभु, अणु का मतलब बहुत छोटा और विभु मतलब असीम है ना, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो भगवान ने भी ये जो स्वरूप धारण किया वो कैसा था, बहुत ही बहुत बड़ा था। ऐसे तो भगवान ने एक कच्छप रूप यहाँ पे लिया, और दूसरा कहाँ लिया मालूम है, दूसरा कच्छप रूप कहाँ पे है भगवान का, ये जो पृथ्वी ये भूमंडल है वो किसके ऊपर स्थित है मालूम है, शेषनाग के ऊपर, और वो शेषनाग किसके ऊपर स्थित है पता है, कच्छप के ऊपर। तो भगवान ने वहां भी एक स्वरूप कच्छप का लेके रखा है, लेकिन यहाँ पे मंथन करना हुआ तो भगवान ने दूसरा स्वरूप वहां पे लिया है ना। तो भगवान के ऐसे कच्छप रूप भी कितने हुए, दो है ना, दो प्रकार के भगवान के कच्छप रूप। और कभी भी हमको ये हीन दृष्टि नहीं करनी चाहिए, हालांकि भगवान का सुकर, भगवान ने सुकर का रूप लिया, कभी मछली बन गया, तो मछली मतलब एकदम हमको तो आप जानते हैं ना, मछली मतलब देख लिया तो जय जगन्नाथ दो देश उधरा है, मछली को जब देखते हैं तो हमारे मन में क्या हो जाता है, टोप भरा रहता है कि नहीं, और देख के घृणा होती है कि नहीं, किंतु हालांकि इतना नीच पशु इतना है ना होने के बावजूद भी भगवान ने जो रूप लिया है वो ऐसा नहीं, उनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती है, भगवान का शरीर जो है वो चाहे मछली का हो चाहे सुकर का हो चाहे कच्छप का हो, भगवान का शरीर जो है वो कैसा है, दिव्य है, वो सच्चिदानंद है, उसमें कोई मांस हड्डी ये सब कुछ नहीं होता है ना, भगवान का शरीर दिव्य है। इवन जब भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया तो उस उस पानी के अंदर जब वो मछली तैर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे सोने की मछली तैर रही हो, सोना होता है और सोना भी कैसा सोना, ऐसा नहीं कि वो डल तो उसका कोई चमक नहीं, ऐसा नहीं, सूर्य के समान सोना जैसे तब चमकता है वैसा सोना वो पानी के अंदर तैर रहा था। और उस रूप को देख रहे थे कौन, सत्यव्रत मुनि। उन्होंने भागवतम के 8वें स्कंद के अंत में ये वर्णन किया है कि भगवान ने किस प्रकार भगवान उस जल के अंदर विहार कर रहे हैं, है ना। तो भगवान का जल विहार लीला मत्स्य रूप में हुआ था, है ना। तो भगवान का कोई भी अवतार हो, चाहे कछुआ अवतार हो, तो ऐसा नहीं कि वो काला कलूटा होगा, वो जैसे कछुआ बारम देखते ऐसा होगा, ऐसा नहीं। भगवान का वो शरीर दिव्य है और उसमें से खूब प्रकाश निकलता है, देख के उनको मन कर लेगा कि उसको भगवान का ये क्या स्वाभाविक रूप से उसको स्पर्श करने का, और बहुत ही स्वच्छ और सुंदर होता है। तो ये मछली वो बाकी मछलियों की तरह नहीं है, और ये कच्छप भी बाकी, और ये जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप होता है भगवान का, है ना। इसमें कोई मांस आदि का विकार नहीं होता। तो भगवान के मत्स्य कच्छप आदि अवतारों के प्रति, उन रूपों के प्रति कभी भी हीन बुद्धि हमको नहीं रखना चाहिए, है ना। भगवान के कछुए के रूप में होते हुए भी क्या है, दिव्य है ना। इसलिए हरे कृष्ण।